الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے دوستو، میرے بھائیو، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہ اتری ہے نہ اترے گی. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی کا ادب، قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی کتاب کے لیے پسند فرماتے ہیں، پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. ورنہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کر سکیں. جس کو اللہ توفیق دے دے الحمدللہ. بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو قرآن کریم کو رات دین پڑھتے تھے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، سونے سے پہلے، اٹھتے ہی نماز کے بعد فوراً قرآن کا پڑھنا. اللہ اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. آپ لوگوں نے غالباً نام سنا ہوگا امام عاصم کوفی کا. امام عاصم کوفی جس کے انداز میں آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کی قرات، انداز قرات جو ہماری ہے وہ امام عاصم کوفی کی. ان کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی، ان کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی تھی. شاگرد ان کے پاس پڑھنے والے، قرآن کی رات پڑھنے والے بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ خوشبو کون سی آپ استعمال فرماتے ہیں. طلبہ جب بھی پوچھتے تھے، استاد جی امام عاصم کوفی، بات کو ادھر ادھر کر کر چھپا دیتے تھے، بتلاتے نہیں تھے. ایک طالب علم جو حضرت کی خدمت کرتا تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا، ایک مرتبہ اس نے زبردستی اصرار کے ساتھ پوچھا، حضرت بتا دیجئے، بتائیے یہ کون سی خوشبو ہے جو آپ بولتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے، بولتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے منہ سے. پھر بات کو ادھر ادھر کر کے انکار کر دیا، لیکن وہ پوچھتا ہی رہا، حضرت بتانا ہی پڑے گا، حضرت بتانا ہی پڑے گا. بار بار پوچھنے سے پھر پوچھا کہ حضرت کوئی منہ میں آپ خوشبو تو نہیں رکھتے ہیں، کیسے؟ اور وہ خوشبو بھی ایسی ہے کہ کبھی سونگھی نہیں ہے، खुशबू की तो हजारों किस्में हैं, हजारों किस्म के परफ्यूम है, लेकिन ये ऐसी है जो कभी सूंघी नहीं है, सबसे अच्छी। हजरत ने फरमाया एक रात मुझको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे क्या हुई भाई, ज़ियारत नसीब हुई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया आसिम तुम सारा दिन रात अल्लाह का कुरान पढ़ते हो पढ़ाते हो, तो लाओ मैं आया हूं मैं तुम्हारे लबों को बूसा दे दूं। लबों से मुराद लिप्स है, तुम्हारे लिप्स को मैं क्या करूं, बूसा दूं। ये ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और जब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी लबों पर मुंह पर बूसा दिया तब से आज तक मेरे लबों से खुशबू ही आ रही है। ये चीज कुरान मजीद के साथ इश्क की हद तक, इंसान की मोहब्बत हो, जब मोहब्बत होती है तो फिर बंदा सोचता है कि आज मेरा पारा परना रह गया। इसलिए जितने भी सलफ़े सालिहीन गुजरे हैं उस सब के सब आशिक के कुरान थे, कुरान के बड़े आशिक थे। वो तो हाफिज़े कुरान भी थे, आलिम भी थे, कारी भी थे, लेकिन कुरान पढ़ने का शौक था। इसीलिए अकबर ने एक शेर कहा, इस दौर में खुश नसीब है वो अकबर, इस दौर में खुश नसीब है वो अकबर, अपनी तरफ इशारा किया, जिसने कुरान को खुला रखा है, जिसने कुरान को खुला रखा। इसलिए सारे मसाइल का हल ये कुरान करीम है, कुरान करीम सारे मसलों का हल करने वाली किताब है। इंसान पढ़ेगा तो उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सूरह बकरा पढ़ेगा तो घर में शैतान नहीं आएगा, भूत नहीं आएगा, झगड़े नहीं होंगे, रोजी में बरकत होगी, बहुत कुछ हो सकता है। जब बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो उस घर में शैतान नहीं आता, फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते तो रहमत लाते हैं, झगड़ा तो लाते नहीं। शैतान आता है तो झगड़े लाता है, झगड़े लाता है। इसीलिए हदीस में है जो बंदा जिस घर में बैठकर कुरान को पढ़ता है वो घर आसमान वाले फरिश्तों के लिए ऐसा चमकता है, ऐसा शाइनिंग होता है वो घर, जैसा कि मुझे यहां बैठे बैठे सूरज नजर आता है, वो कैसे शाइनिंग होता है, वो कैसे चांद नजर आता है, वो कैसे सितारा नजर आता है, ऐसे आसमान वाले फरिश्ते को उस घर में कुरान की रोशनी नजर आती है। मालूम होता है कुरान तो रोशनी पैदा कर रहा है। इस किताब की मोहब्बत से अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बना देगा। हदीस में है अल कुरान यशफान, कुरान और फास्टिंग, ये कयामत के दिन बंदा जब उठेगा ना अपनी कब्र से परेशान होगा, अल कुरान वसियाम यशफान, उसका हाथ पकड़े के चल पा चल, मैं अल्लाह के सामने आज तेरी सिफारिश करता हूं कुरान। कयामत के दिन कोई सिफारिश नहीं करेगा, उस वक्त कुरान पढ़ने वाले की कुरान सिफारिश करेगा। इसीलिए कुरान हुज्जतुल लका औ हुज्जतुल अलैका, कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत सिफारिश है या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारे मुताबिक या तुम्हारे खिलाफ, जो पढ़ेगा उसके लिए गवाही देगा। इसको कब्र में भी, और वैसे भी दो चीज हमेशा लाजिम पकड़नी चाहिए, एक कुरान और एक सुन्नत, यही चीज है। हदीस में आता है तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, इंतकाल से पहले पहले फरमाया दो चीजें मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूं, तुम उसको पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होंगे। एक किताब अल्लाह कुरान करीम व सुन्नती, और दूसरी क्या है? मेरी सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात कहूं इकबाल भाई, बुखारी शरीफ में कब्र में सवाल होगा उसकी सात जगह पर इमाम बुखारी ने हदीस बयान की है। कितनी जगह? सात जगह। लेकिन किसी भी हदीस में बयान नहीं किया कि यह सवाल होगा मन रब्बू का मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। यह सवाल वाली हदीस तो अबू दाऊद शरीफ में है, यह सवाल वाली हदीस तो मुस्नद अहमद में है, इमाम बुखारी मेंशन अप्रोक्सिमेटली 7 हदीस इन होल बुखारी शरीफ अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द ग्रेव। In those hadiths, is not mentioned at all about this question that Allah, angel are going to ask you, man rabbuka ma din. Usme jo tisra sawal hai, ma kunta taqulu min hadhar rajul, wo sawal likha hai, wo 7 hadithon mein uska zikr hai. Tera kya khayal hai is aadmi ke bare mein, batao wo kaun hai aadmi, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा क्या ख्याल है। अगर ये उसको दुनिया में मानता होगा तो उसमें रब भी आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी को उन्होंने बताया कि हमारा रब अल्लाह है, और उन्होंने बताया उनका दीन क्या है। ये हदीस इमाम बुखारी ने कहा कब्र में सवाल होगा, मा कुंत तकुलू, क्या कहता है तू इनके बारे में, अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम सब कामयाब हो जाएंगे सारे सवाल। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कुरान करीम और अपने दीन के जितने काम काज है सुन्नत के मुताबिक करना तो है ही, हर काम को करना है। मस्जिद से निकलना है, मस्जिद में दाखिल होना है, घर में दाखिल होना है, घर से निकलना है, टॉयलेट में करना तो है ही। टॉयलेट में कौन नहीं जाता है, कौन नहीं निकलता, कौन बाथरूम में नहीं जाता, कौन वुजू नहीं करता, कौन सोने नहीं जाता, कौन खाना नहीं खाता। काम तो हम करते ही है, सिर्फ उसको जरा सा बदलना है कि उस काम को सुन्नत के मुताबिक कर लो, हो गया काम। खाना खाते हैं, अब सुन्नत के मुताबिक खाओ, हाथ धो लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाओ, खाना तो खाना ही है। खाना खा लिया, अब हाथ धो लो, दुआ पढ़ लो, सुन्नत के मुताबिक, हाथ तो धोना ही है। इस तरह हर सुन्नत को सिर्फ थोड़ा सा बदलना है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसको मैं अदा कर दूं। दीन में ऐसे 50 काम आप सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो पूरी जिंदगी में कितनी सुन्नत अदा हो जाएगी। अलैकुम बिसुन्नति इंद फसादी उम्मती फलहू अज्र मिअति शहीद। जब दुनिया में करप्शन हो, दुनिया में लोग सुन्नत छोड़ रहे हो, ऐसे वक्त में तुम एक सुन्नत को अदा करोगे तो तुम्हें उस जमाने के 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। उस जमाने के 100 शहीद, एक शहीद का दर्जा कितना बड़ा है, 100 शहीद एक सुन्नत पर है, इतना बड़ा सवाब है। क्यों? इमामुल अंबिया बहुत, उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी होनी चाहिए। बहुत आसान है जिंदगी गुजारना, बहुत आसान है। सुबह फजर की नमाज पढ़ ली, या जोहर के बाद, या असर के बाद, या मगरिब के बाद नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा कुरान खोल लिया, अल्लाह के साथ बात कर लो। अल्लाह के साथ क्या है? बात कर लो। इसलिए कि कुरान अल्लाह का लेटर है, अल्लाह का क्या है, खत है, खत लेटर। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं वजू करके नमाज पढ़ता हूं, गोया मैं अल्लाह से बात कर रहा हूं, और जब मैं चाहता हूं अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं वुजू करके कुरान पढ़ता हूं, गोया कुरान अल्लाह का कलाम है, वो मुझसे बात कर रहा है। तो थोड़ा दिन में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट ज्यादा नहीं, 10 मिनट में आप 2-4 रुकू तो पढ़ लोगे, आप 1 रुकू भी पढ़ लो, आहिस्ता आहिस्ता वो कुरान तुम्हारे दिल में नूर पैदा पर करेगा और वो मैग्नेट की तरह हो जाएगा कि तुम्हें और पढ़ लो रोजाना, और पढ़ लो 2-4 आयत और पढ़ लो, वो खींचेगा तुमको, द कुरान इज गोइंग टू पुल यू। ये चीज है, अगर कोई बंदा चाहे या अल्लाह की कोई बंदी चाहे अल्लाह का महबूब बनना, ये काम कर, बाकी अय्याम में चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कर लो। और सबसे बड़ा जिक्र सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अजीम है, ये तो मैं नहीं कहता हूं, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, सबसे बड़ा जिक्र, द बेस्ट जिक्र इज द लास्ट हदीस ऑफ बुखारी शरीफ, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान। कौन नहीं चाहता कि उसका तराजू हैवी हो जी, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीन, जिसका मीजान जिसका तराजू थकुलत भारी हो, फहुवा फी इशति राज़िया, वो बहुत खुश होगा राजी होगा, वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन, और जिसका मीजान नेकी हल्की होगी, फउम्मुहु हाविया, उसको जहन्नम हाविया में जाना पड़ेगा। और अल्लाह कहते हैं वमा अदराक मा हिया, पता है वो क्या है, नारुन हामिया, जलती हुई ब्लेसिंग फायर है। कौन नहीं चाहता मेरा तराजू भारी हो, हर आदमी चाहता, लेकिन ये अजीब हदीस है, कलीमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीजान खफीफतान अलल लिसान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। क्या कह रहे, दो कलमे रहमान को बड़े प्यारे हैं, प्यारे हैं, अल्लाह को कोई चीज प्यारी हो, भाई यार मेरी बीवी को ये प्यारी है मैं इसको खरीद लू, कहते हैं कि नहीं, मेरे शोहर को ये प्यारा है मैं खरीद लू, उसको फुला खाना अच्छा लगता है मैं पका लू, कहते हैं कि नहीं करते, तो रहमान का भी कोई प्यारा प्यारी चीज है, अल्लाह ने खुद कह दिया है, सही हदीस है, कलीमतान है हबीब प्यारी है, इलर रहमान रहमान को, खफीफतान अलल लिसान जबान पर बड़ी हल्की है, पढ़ने में बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, जाहिल से जाहिल अनपढ़ से अनपढ़ भी पढ़ सकता है, खफीफ है बहुत खफीफ हल्की है, तो बंदा सोचता है हल्की है तो फिर इसके इतने स्वभाव तो नहीं होगा, हल्की है तो स्वभाव भी थोड़ा होगा ना, एक पाउंड कम है 100 पाउंड ज्यादा है, तो हल्का है तो फिर क्या उसका वैल्यू भी कम है, चांदी का वैल्यू कम है सोने का ज्यादा है, तो बंदा सोच सकता है खफी पता है हल्की है जबान पर तो सवाब में भी हल्की होगी, फौरन अल्लाह के नबी ने फरमाया सकीनता ने फिल मीजान, नहीं 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 नहीं, जबान पर तो हल्की है चूंकि सब पढ़ सके, लेकिन कयामत में तराजू में रखेंगे ना तो भारी है, तराजू भर जाए बहुत हैवी है, शकील के माना इसी को यहां कुरान में भी कहा, फअम्मामन सकुलत मवाज़ीन, जिसका मिजान शकील हो जाए भारी हो जाए, ये सब बातें मैंने सोची नहीं, अल्लाह जबान में डाल रहा है दिमाग में डाल रहा है, आप मेरी माए और बहने में आप सबके लिए मैंने दुआएं की हज में अरफात में मुज़दलिफा में जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह मेरी इन दुआओं को कबूल करे, और बड़ा रोना भी आया अरफात में, चूंकि एक ऐसी जगह है जहां कोई आदमी नाउमीद नहीं होता, हदीस में आता है जो अरफात में आए और यूं कहे मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह को उसके अलावा और किसी पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना उस आदमी पर आता, तो एक मैदान में आया जहां मैंने तुझे बुलाया है और वहां तो नाउमीद है, इसलिए वहां दिल खोल कर मांगना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए मांगना है, और खुसूसन जो हमारे दर्स में आते रहते हैं, हमारी मस्जिद में आते रहते हैं, तफसीर में रियाजुस सालीहीन के दर्स में हमारी माए और बहन सबके लिए, क्योंकि ये लोग तो गोया हमारे तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो खास दुआ होती है, उस्ताद के स्टूडेंट के लिए तो खास दुआ होती है। सो ये अल्लाह का शुक्र माना करें कि अल्लाह पाक ने हमें चलते फिरते रखा है। तो मैं लोगों को वहां भी कहता था, भाई ये मुजदलिफा में मीना में टाइम वेस्ट ना करो, तराजू भारी करो, तराजू भारी करो। मैंने उनको मीना में भी यही समझाया, मेरे प्रोग्राम मीना के भी है, अरफात की दुआ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी और इसी तरह आखिरी दुआ भी आएगी। यही चीज मैं कहता रहा अपने पूरे ग्रुप को, 155 आदमी का ग्रुप था, 155 यही कहता रहा, बल्कि और लोग भी सुनने आते थे, दूसरे ग्रुप वाले भी, कनाडा के, यूरोप के, अमेरिका के भी उस बिल्डिंग में सारे आ जाते थे, ऊपर मस्जिद बहुत से लोग आते थे। मैं कहा करता था कि सबसे आसान और सबसे भारी चीज कौन सी है बताओ, तो सब मेरा मुंह देख रहे, ये क्या चीज है सबसे आसान और सबसे भारी। जैसे मैंने कहा ना, लोग समझते होंगे ये तो जबान पर तो हल्की है तो सवाब में हल्की, आसान है तो सवाब में भी आसान, नहीं सवाब में बहुत भारी है। मैंने कहा ये चलते फिरते आप यहां मक्का मुकर्रमा में, मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में दुरूद शरीफ, यहां ये कलमा कसरत से पढ़ो, एक बार पढ़ोगे 1,00,000 कलमे का सवाब मिलेगा। हरम की जमीन में तो सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम एक बार पढ़ लिया, 1,00,000 कलमे का सवाब मिल गया। चलो यहां 10 मिलता है, वहां तो 1,00,000 मिलता है, तवाब में भी चूंकि इबादत में है तवाब तो नमाज है गोया के। इसलिए इमाम बुखारी आखिर में यही रिवायत लाए हैं सबसे अच्छी कि जबान पर हल्का है। तो मैं आज के इस सबक में 3 चीजें बतलाना चाहता हूं कि कुरान करीम को आप पकड़ो, चाहे 5 मिनट के लिए भी हो, 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी कुरान खोल के जरा सा पढ़ लो, आहिस्ता आहिस्ता शौक पैदा होगा और यही कुरान कब्र में भी और कयामत में हमारा साथ दे देगा। कोई नहीं है, कुरान हमारे साथ है, कुरान हमारे साथ है। यकीन के साथ बंदा कुरान के साथ ताल्लुक पैदा करे तो अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देगा और उसकी आखिर। लेकिन यकीन होना जरूरी है, यकीन का होना क्या है जरूरी है, और उसी में सब कुछ है। कुरान के सारे हमारे सारे घरेलू फैमिली मसाइल का हल कुरान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पर काफिर लोग इल्जाम लगाते थे, बातें बनाते थे, अल्लाह के नबी का दिल दुखता था। कभी पागल कहते थे, कभी जादूगर कहते थे, मैजिशियन कहते थे, समटाइम दे यूज टू कॉल हिम जी शाहिर कहते थे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। सो अल्लाह ताला क्या फरमाते, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान को आहिस्ता आहिस्ता, कभी 1 आयत, कभी 5 आयत, कभी 1 रुकू, कभी 1 सूरत उतारते थे। क्यों? उनके दिल में थोड़ा गम पहुंचा है, दुख पहुंचा है। ذلك لنثبت به فؤادك, ए मेरे नबी इस कुरान से हम तुम्हारे दिल को मजबूत बनाएंगे, सारा गम खत्म हो जाएगा। ये कुरान मालूम होता है इंसान के गमों का मरहम पट्टी कुरान है। ये गोया नुस्खे शिफा है, बहुत जबरदस्त। एक पारा पढ़ लो, आधा पारा पढ़ लो, कौतर पारा पढ़ लो, लेकिन अल्लाह से बात कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जब उतरता था तसल्ली मिलती थी। ये बरकत है कुरान पाक की। अगर आप चाहते हैं आपके गम दूर हो, तसल्लियां मिले, परेशानी दूर हो, तो आज कोई भी गमजदा अल्लाह के कुरान करीम की तलावत करेगा, خدائے پاک کی قسم اس کے دل کو سکون مل جائے گا، تسلی مل جائے گی۔ لیکن جب ہم پر غم آتا ہے تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ شکوے شکایت کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے ساتھ صحابہ جیسی محبت ہوتی تو صحابہ جیسا انس بھی پیدا ہوتا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پریشانی ہے، قرآن کھولو۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک شہر میں مسلمان اور ہندو ساتھ رہتے تھے، ہوتا تھا نیبر ہندو ہے نیبر مسلمان۔ ایک ہندو گھرانہ تھا، ہندو گھرانہ، اور وہ ہندو، وہ کہتے ہیں نا اس کو، کٹر ہندو تھا، ہندوازم میں بہت سخت تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اسکول پڑھتی تھی۔ ایک اور اسکول کی اس کی فرینڈ تھی، وہ مسلمان تھی، وہ اس کے پڑوسی تھی، اسی محلے میں رہتی تھی، لیکن وہ مسلمان کی لڑکی ہے، یہ ہندو کی لڑکی ہے، لیکن اسکول میں دونوں کیا ہیں؟ فرینڈز ہیں۔ وہ بھی اسکول پڑھتی تھی، یہ بھی، ابھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، چھوٹی بچیاں ہیں۔ تو جب گھر ٹیچر ہوم ورک دیتا ہے تو یہ ہندو لڑکی مسلمان کے گھر چلی جاتی تھی اور ساتھ میں بیٹھ کر دونوں ہوم ورک کرتی تھی۔ سو مسلمان بچی کی ماں تھی، وہ عالمہ تھی، وہ کیا تھی؟ عالمہ تھی، اور وہ جغرافیہ بھی جانتی تھی، وہ میتھس بھی جانتی تھی، اسلامیات میں بہت ہی ایکسپرٹ تھی۔ سو وہ ہندو گھر والے مطمئن تھے کہ ہماری بچی جو مسلمان کیا جاتی وہ عورت ٹھیک ہے، تو ان کو تسلی تھی، وقت ضائع نہیں کرتی، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہ عالمہ گھر میں پارٹ ٹائم شام کو ناظرہ قرآن پڑھاتی تھی۔ تو وہ لڑکی جب آتی تھی، اپنا ہوم ورک اسکول کا فارغ کر لیتی تھی، تو اس لڑکی نے کہا، آنٹی مجھے بھی آپ سے یہ بک پڑھنی ہے، قرآن کریم سیکھنی ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ ہندو بچی جب ان کے گھر جاتی، سو اپنے دوست کو یعنی اپنی فرینڈ کو پاس بیٹھی، الف زبر با زبر تا زبر تختی دیکھتی، تو ساتھ وہ بھی سنتی تھی، لو جی اس نے بھی تو ساتھ میں پڑھنا شروع کیا، قاعدہ ختم کر لیا، ہندو کی لڑکی ہے، قاعدہ پڑھ لیا۔ تو مسلمان بچی نے جب قرآن کریم کو شروع کر دیا تو یہ کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ پڑھنا شروع کرتی ہوں، مجھے بھی سکھاؤ۔ اس بچی نے ماں کو بتایا، تو ماں اس کو سمجھانے لگی، پہلے تم نے ایک کلمہ پڑھنا ہے جس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھنا آسان ہے، ورنہ ویسے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ لے تو تم کو کیا ثواب بھی ملے گا۔ سو لیکن اپنے گھر میں بتانے کی ضرورت نہیں، تم کلمہ پڑھ لو۔ اس ہندو بچی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، اس نے قرآن شروع کیا، ادھر بچی نے قرآن ختم کیا، ادھر ہندو بچی نے بھی قرآن ختم کر دیا۔ اندازہ کرو، وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اور آنا جانا کثرت سے تھا، چونکہ وہاں سے بڑی ہوئی آتی جاتی رہی اس کی فرینڈ کے ساتھ۔ اب مسلمان جو عالمہ تھی، اس نے اس بچی کو تھوڑے اسلام کے رول ریگولیشن بتانے شروع کیے کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، تو چھپ چھپ کر وہ نماز ان کے گھر آ کر پڑھ لیتی تھی، مسلمان تو ہو چکی تھی، نماز پڑھتی تھی، मगर घर में जाकर हिंदू की तरह रहती थी, इधर आकर नमाज पढ़ती थी, इसलिए कि मां बाप से भी डरना होता था क्योंकि बहुत कट्टर हिंदू थे वो लोग। अल्लाह की शान देखिए, अब उस लड़की की शादी का वक्त आ गया, बड़ी हो गई। अब हिंदू लोगों ने एक हिंदू लड़का देखा, सो ये रोटी हुई उस अपनी आंटी आलिमा के पास आई और उनकी वालिदा से यानी आंटी से कहा, मेरे माँ बाप ने एक हिंदू लड़के के साथ शादी का प्रोग्राम बना लिया है, मैं क्या करूं, मैं मुसलमान बन चुकी हूं और वो हिंदू है। रो रही थी, वो पक्का हिंदू था। अगर कोई हिंदुओं में से मुसलमान बनने की कोशिश करे तो वो कत्ल कर देता था। उसका बाप वैसा आदमी था, अब ये तो उसको मार देगा। मैं उसकी बीवी बनूंगी तो मेरी क्या हालत होगी अगर उसको पता चल गया कि मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ती हूं। तो कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आलिमा ने बहुत तसल्ली दी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, जब तुम्हें फारिग वक्त हो, शोहर काम पर चला जाए तो कुरान पढ़ना, जब शोहर घर में ना हो काम पर चला जाए कुरान पढ़ना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरी पॉइंट समझ में आ रही है? कुरान खाली वक्त में, शोहर काम पर जाए तो बैठे बैठे कुरान पढ़ना, तेरे शोहर में तेरे घर में बरकत होगी, मोहब्बत होगी इसकी वजह से। मैं तुम कुरान पढ़ते रहना। उसने कहा, कुरान तो मेरे पास नहीं होगा, मैं तो हिंदू घर में जा रही हूं, यहां कुरान तुम्हारे पास है, क्या होगा मेरा, कहां से लाके पढ़ूंगी, मैं हाफिजा तो हूं नहीं। उसने कहा, कुरान को तुझे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो भी बेचारी हिम्मत वाली आलिमा थी, इतना बड़ा स्टेप ले रही है, एक ऐसे घराने में बच्ची जा रही जिसका शौहर ही कत्ल कर दे, और ऐसे घर में कुरान का पहुंचना, और अगर खुल गया तो, जब शादी का एक दिन रह गया तो मुसलमान बच्ची की वालिदैन है, वालिदा जो थी वो आलिमा जो थी, उसके वालिदैन को पैगाम भेजा कि तुम्हारी बच्ची की शादी है और ये मेरी बच्ची की फ्रेंड बनती है, क्लास फेलो है और हमारे बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती है, तो मैं उसको कोई हदिया देना चाहती हूं, तोहफा देना चाहती हूं। तो उसने एक तश्तरी ली, एक प्लेट ली, उसमें कुरान मजीद को रखा और उस पर खूबसूरत कपड़े सिले हुए रख दिए और उसकी पैकिंग खूबसूरत करवाई, और बंदे का दिल करता था कि उसको खोलने के बजाय ऐसे ही उसको रख दे, यानी अब क्या है, उसको गोया डेकोरेशन की तरह भिजवा दिया, बिल्कुल तैयार, खोलना नहीं, हदिया है, तुम्हारे शोहर के घर जाके खोलना। मां ने जब देखा कि इतना खूबसूरत तोहफा है, कहा मेरी बेटी उसको ले जाओ ससुराल में, शोहर के यहां, वहां जाके खोलना। हिंदू लड़की उसको साथ ले गई, उसने जाकर खोला तो उसमें कुरान करीम था। पहुंचाने की जिम्मेदारी आलिमा ने ली थी, कुरान पहुंच गया। अब दिन में खाविन तो ऑफिस में काम करता था, ये अंदर से बंद करके पूरा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, यही तो सहारा था उसका, कुरान पढ़ती थी और अल्लाह से मांगती थी कि समझ में नहीं आता था कि वो किस माहौल, इस माहौल से कैसे निकले, कुरान अल्लाह से मदद मांगती थी, ये तो हिंदू है और मैं कैसे निकलूं इस घर से, क्या रास्ता होगा, उधर मेरा बाप भी मुझे कत्ल कर देगा, इधर मेरा शौहर, अब क्या करूं। तो कुछ शादी के साल गुजर गए, एक दिन उसका खाविन आया, कहने लगा आज बहुत थका हुआ हूं। शोहर ने क्या कहा, काम से आ गया थका, आज मेरी तबीयत बराबर नहीं है। उसने कहा आप आराम करें, मैं आपको चाय बनाकर देती हूं, चाय बना देती हूं। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, चलो डॉक्टर के पास ले जाती हूं। डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जब वहां ले जाया गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। शोहर को क्या कहा, तुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसलिए अभी तू चल नहीं सकेगा, कमजोरी हो जाए, एक महीने के अंदर बहुत बहुत तो तू खत्म हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। ये वार्निंग डॉक्टर ने दे दिया, देते आज भी यहां देते। अब बीमारी इस हद तक फैल चुकी है कि वो लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। ये घर वापस आया परेशान था, घर को देखे तो बीवी भी रोए, बच्चों को देखे तो वो भी रोए, बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो कहा अब तो मैं मर जाऊंगा और तुमसे मैं बिछड़ जाऊंगा। बीवी ने वजह पूछी क्या है, उसने बताया कि कैंसर है मुझे तो, और डॉक्टर ने कहा ये इलाज है, एक महीने के बाद खत्म हो जाएगा। रोता रहा, बीवी भी रोती रही, फिर बीवी ने उसको कहा मेरे पास एक दवाई है। क्या कहा? मेरे पास कैंसर को खत्म करने की एक दवा है। ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं मैं आपको, इधर उधर का नहीं, सच्चा वाक्य है। एक कैंसर की दवा है, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन शर्त यह है कि आप कैंसर की इलाज बीमारी से, लास्ट स्टेज बीमारी से ठीक हो जाएं, तो मैं जो कहूं आपको वो करना पड़ेगा। उसने कहा बहुत अच्छा, आदमी की जिंदगी भली होती है, किसको पसंद नहीं जिंदगी। उस लड़की ने अच्छी तरह खाविन से सब तसल्ली ले ली कि ये कह रहा है सही कह रहा है या नहीं, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें वो इलाज देती हूं, लेकिन मैं जो कहूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा 100%। अब हिंदुओं का जो तरीका था, उसके मां बाप ने सब कुछ कर लिया, ये वो पंडित मंदिर सब कुछ कर लिया। अब वो रोजाना पानी देती थी पीने के लिए, सुबह दोपहर शाम, और कहती थी 41 दिन तक आपको यह पानी पीना है, 41 डेज, जिसे बोल सकते दम करके देते। उस औरत ने कहा यह रोजाना तुम्हें 41 दिन तक पानी पीना है, खा भी पी लेता और कहता कि उसमें तो कौन सी दवा है, दवा तो है नहीं। कहा तुम पी लो शिफा मिल जाएगी, तुम पियो शिफा मिल जाएगी। 41 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर की कोई बीमारी ही नहीं है, खत्म हो गई, जड़ मूल से खत्म हो गई, सेहतमंद, अपने आप को ताकतवर महसूस करते हो, एक्टिव। तो हां, कहा घर आया तो बीवी को कहा तेरी दवा तो बड़ी काम आई, बगैर दवा के पानी पीता रहा और ठीक हो गया। कहा वही वादा है जो बीवी ने कहा वादा कर किया है आपने मुझसे, वादा पूरा करो। कहा क्या वादा है, कर देंगे। कहा तुम जो कुछ कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ठीक हो गया, अब तो जिंदगी दोबारा मिल गई, मरने के बजाय दूसरी जिंदगी मिल गई। उसने कहा नहीं, मेरा मुतालबा यह है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम कलमा पढ़ लो, मुसलमान बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। हम हिंदू हैं और हम हिंदू घराने में आंख खोली, बाप दादा हिंदू, हम कैसे कलमा पढ़ ले, मेरे मां बाप मुझे मार देंगे। चोर कहने लगा, उसने कहा तुम्हें जो शिफा मिली है वो अल्लाह के कुरान की वजह से मिली है, क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, वो पढ़कर मैं कुरान में पानी में दम करती थी और आपको देती थी, अल्लाह पाक ने उस कुरान से तुम्हें शिफा दे दी है। अब लड़की ने सारी तफसीर बताई कि कुरान कैसे पढ़ा, नमाज कैसे पढ़ी, मुसलमान कैसी हुई, सब कुछ वही आयत शिफा है ना कुरान में, आयत शिफा है कुरान में, 5-6 आयत है कुरान में आयत शिफा, आप देखोगे, आप गूगल आउट कर लो आयत शिफा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाब में बुजुर्ग को बतलाया था, उनका बेटा मरने के करीब था, इसको दम किया करो, दम किया बेटा सुबह ठीक हो गया, ये आयत शिफा है। वयश्फी सुदूर कौमी मुमिनीन वशिफाउ लिमा फी सुदूर कुल हुवा लिल्लदीन आमनू हुदन वशिफा, ये 5-6 आयत है जो आप देख सकते हैं, कहीं भी लिखी हुई होगी, बल्कि तुम गूगल करो आयत शिफा फौरन आ जाएगी, समझ में आई बात। तो ये है कुरान करीम के बरकत। तो मैंने आज के सबक में कुछ सोचा कुछ और था, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ और कहलवाया। कुरान करीम नंबर 1, नंबर 2 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नंबर 3 बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस वाला वजीफा, तराजू भारी करने के लिए और अल्लाह का महबूब बनने के लिए। सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, और दुरूद पाक कसर से पढ़े। ये 3-4 काम करें, फर्ज नमाज टाइम पर पढ़ ले, फर्ज नमाज टाइम पर पढ़ ले, नंबर 1। نمبر دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور مختصر دو چار پانچ کوتر آدھا پارا پڑھ لیں اور سنت روزانہ جو کرتے ہیں کام سنت کے مطابق کر لیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بس نیت ہی کرنی ہے، اور ذکر اللہ کرتے رہے، آپ وقت کے بہت بڑے ولی اور میری مائیں اور بہنیں آپ سب سے بڑی ولیہ بنو گی اگر یہ کام کرو گی، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ میں نہیں کہتا پوری پوری رات تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاس نہیں، مختصر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اور یہ تین چار کام میں نے بتائے ہیں سب سے آسان ہیں اور یہ اللہ کے محبوب بننے والے کام ہیں، قبر میں بھی اللہ کے محبوب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی قرآن یہی سنت قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، یا اکرم الاکرمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
آمین۔
اللهم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللهم جز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين۔ اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من عندنا من اعمالنا۔ اے اللہ، اے رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا غفار، یا ستار العیوب، غفار الذنوب، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، جانے انجانے، جو بھی گناہ کیے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، ہماری ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اقارب، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں درس میں شامل ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تکبر سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، غیبتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، اے اللہ بدعتوں سے ہماری ہماری آل و اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، بگڑنے سے، پھسلنے سے ہماری ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، تو نے ہی قرآن میں ہمیں فقیر کہا ہے، انما الصدقات للفقراء یا ایها الناس انتم الفقراء، تو نے ہمیں فقیر کہا ہے۔ اے اللہ، اور صدقات، صدقات فقیروں کے لیے ہوتا ہے، صدقات فقیروں کے لیے ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در پر تیرے نبی کے کلام کو پڑھ کر تجھ سے تیری رحیمی کا صدقہ مانگتے ہیں، تیری اے اللہ مغفرت کا صدقہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیری ستاریت، اے اللہ تیری کریمیت کا صدقہ مانگتے ہیں۔ ہم پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے میرے مولا، تو نے قرآن میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھکاری تمہارے در پر آئے تو انہیں جھرکنا نہیں، اسے کچھ نہ کچھ دے دینا۔ اے اللہ تو نے بندوں کو کہا ہے، اے اللہ تیری شان تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، اللہ میں خالی ہاتھ نہ لوتا۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یا رحمان پوری امت کی مغفرت فرما دے، زندوں کی، مردوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق نصیب فرما، سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، پوری امت کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ میرا یہ پروگرام الہ العالمین جہاں جہاں تک جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ سنانے والے اور پہنچانے والے، اے اللہ اور سننے والے سب کی مغفرت فرما، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو محبت و پیار کے ساتھ درس میں شامل ہوتے ہیں، تیرے نبی کی محبت میں اللہ سب کو تیری شاعر شان محبت نصیب فرما. اللہ تیری شاعر شان محبت نصیب فرما, تیری شاعر شان محبت نصیب فرما, سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری ہماری اعلی اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے مجھے شفا عطا فرما, عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما اور دین کا کام اے الہ العالمین اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ میں للہیت نصیب فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے ان آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. رحمت.